रात के अंधेरे में विजय ने मौका देखा और दामिनी के साथ स्कूटी लेकर आहान के विला से भाग गया था। उसके पीछे से सिक्योरिटी गार्ड ने गोली भी मारी थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग निकले थे। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर आहान, शिवानी और आयुष की नींद टूटी। चाहत भी नींद में कसमसाने लगी, लेकिन आहान ने उसे सहलाते हुए कहा, सब ठीक है डॉल, तुम सो जाओ। लगता है किसी की शादी है तो क्रैकर्स जला रहे होंगे। हाँ, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कोई गोलियां मार रहा हो, चाहत ने बंद आंखों से कहा। तुम आराम से सो जाओ, मैं देख कर आता हूँ, आहान ने जवाब दिया और फिर जल्दी से दौड़कर बाहर गया। वहीं आयुष और शिवानी भी कमरे से निकल चुके थे। शिवानी के गोद में वामिका थी। दोनों के चेहरे पर ही घबराहट के भाव थे और वो दौड़कर नीचे आए। शिवानी ने आयुष से हैरानी से कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने शूट किया हो। नीचे विजय और दामिनी कैद हैं, कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आप यहीं पर रुकिए, मैं देख कर आता हूँ, आयुष ने जवाब दिया और वहां से जाने को हुआ। तभी आहान भी नीचे आ चुका था। आयुष समझ गया था कि आहान की नींद क्यों टूटी होगी। उसने आहान की तरफ देखकर कहा, चलिए नीचे चलकर देखते हैं, कहीं उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। अरे तुम दोनों प्लीज ऐसे ही मत जाओ, अगर उन्होंने शूट किया है तो वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें कुछ हो गया तो। प्लीज बेटा ऐसे मत जाओ, शिवानी ने डरते हुए कहा। वो अपने बेटों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आहान और आयुष ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और चंदी से बाहर आए। उन्होंने देखा सामने का दरवाजा खुला हुआ था। आहान ने गार्ड से जाकर सर्द आवाज में पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर, इतनी रात को तुम गोलियां किस पर चला रहे हो और ये गेट किसके लिए खोल रखा है तुमने? गार्ड की नजरें झुकी हुई थी। वो बोला, वो दोनों भाग गए हैं, मुझे लगा कि कोई हाउस हेल्पर स्कूटी से बाहर निकला है, इसीलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने पीछे से गोली भी मारी थी, लेकिन वो चले गए। आहान उसके कहने का मतलब समझ चुका था, लेकिन आयुष हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो बोला, कौन चला गया, तुम किसकी बात कर रहे हो? गार्ड के कुछ कहने से पहले ही आहान जवाब में बोला, ये विजय ओबेरॉय और दामिनी दास की बात कर रहा है, वो यहाँ से निकल गए हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं गन लेकर आता हूँ। आयुष ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और अपनी स्पोर्ट्स कार निकाली। इस वक्त वही सबसे तेज गति में उनका पीछा कर सकती थी। वही आहान अंदर पहुंचा। वो कमरे की तरफ बढ़ने से पहले शिवानी से बोला, मॉम आप डॉल के कमरे में जाइए और उसे एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, वो उठ जाए तो कुछ भी बहाना बना देना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है आहान, बाहर सब ठीक है ना, शिवानी ने जल्दी से पूछा। आहान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अगले 5 मिनट में वो गन के साथ नीचे था। उसने बाहर निकलने से पहले शिवानी से कहा, हाँ अब तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे सब ठीक रहेगा इसका कुछ कह नहीं सकता, प्लीज मेरी डॉल का ख्याल रखिएगा। आहान जल्दी से बाहर आ गया। बाहर आयुष गाड़ी के साथ तैयार खड़ा था। आहान गाड़ी में बैठा। जब गाड़ी दरवाजे से बाहर निकलने लगी, तभी आहान ने सिक्योरिटी गार्ड से तेज आवाज में कहा, अब ये दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा जब तक हम वापस नहीं आ जाते, चाहे यहाँ कोई भी क्यों ना आए, तुम गेट नहीं खोलोगे, सभी गार्ड्स को अलर्ट कर दो। उन सबको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आहान ने अपने आदमियों को भी कॉल किया। वो विजय और दामिनी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ विजय और दामिनी स्कूटी पर थे। वो कितना भी फास्ट ड्राइव क्यों ना कर ले, लेकिन कम टाइम में ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते थे। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद विजय और दामिनी को लगने लगा कि वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। दामिनी ने विजय से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं विजय, हमें काफी टाइम हो गया है, वो अब हमारे पीछे नहीं आएंगे, तो प्लीज रुक कर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है दामिनी, वो आहान ओबेरॉय है, उसे इतना हल्के में लेने की कोशिश मत करो, जब तक हम किसी सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाते हम रुकने वाले नहीं हैं, विजय ने तेज आवाज में कहा। मेरी बेटी वहीं पर रह गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे किए की सजा हमारी बेटी को दे, चलो जल्दी से हमारे घर चलते हैं, उसके बाद पुलिस को कॉल करके उन्हें सब बता देंगे, वही हमारी हेल्प कर सकते हैं, दामिनी ने घबराई आवाज में कहा। वो एक बार फिर आहान के चंगुल में फंसकर होस्टेज बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसकी बातों से इरिटेट होकर विजय बोला, इस वक्त मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, आहान ने हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा घर हमारे लिए एक सुरक्षित जगह साबित होगा, और पुलिस में जाने पर मामला और बढ़ सकता है, तो फिर राजवीर के घर पर चलते हैं, वही आहान के टक्कर का है, वो हमें बचा भी लेगा, दामिनी ने सुझाव दिया। कोई फायदा नहीं है दामिनी उसके पास भी जाने का, हम उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें मुंबई से बाहर निकलना होगा, विजय ने जवाब दिया। दामिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले विजय ने चिढ़कर कहा, अब प्लीज भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो, एक तो ऐसी सिचुएशन में मुझे वैसे ही एंजाइटी हो रही है, ऊपर से ठीक से ना खाने पीने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाए, फिर आहान से कैसे निपटना है उसके बाद में आराम से सोचेंगे। आहान और दामिनी मुंबई से बाहर निकल रहे थे। वैसे भी आहान का विला मुंबई के आउट एरिया में बना हुआ था। विजय ड्राइव करते वक्त मुंबई के अंदर जाने के बजाय बाहर के हिस्से में ही जा रहा था। लगभग 45 मिनट के आसपास हो जाने के बाद विजय ने महसूस किया कि उसके सामने से काफी सारी गाड़ियां आ रही हैं। विजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा तो पीछे भी काफी गाड़ियां थीं। विजय ने दर्द से हंसते हुए कहा, लगता है हमारी किस्मत में आहान ओबेरॉय की कैद में सड़ना ही लिखा है। दामिनी समझ चुकी थी कि विजय ऐसा क्यों कह रहा है। उसने इधर उधर देखा और फिर रोते हुए बोली, नहीं विजय, प्लीज कुछ करो, मुझे वापस वहां नहीं जाना है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे उस सड़े हुए बेसमेंट में फिर से आहान ओबेरॉय की कैद में नहीं रहना। हाँ, जैसे मुझे तो बहुत शौक चढ़ा है वहां पर रहने का, विजय ने गहरी सांस लेकर कहा और स्मार्टेस्ट दिखाते हुए राइट टर्न ले लिया। विजय का पीछा करती हुई गाड़ियां आगे और पीछे से ही आ रही थी। साइड का एरिया बिल्कुल सेफ था, ये सोचकर विजय ने साइड में टर्न लिया था। वो खेतों के एरिया में घुसने लगा था। विजय ने ड्राइव करते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा कि तभी उसकी स्कूटी का बैलेंस खो गया और वो एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराते ही स्कूटी हवा में उछली और उसने विजय और दामिनी को उछलकर जमीन पर गिरा दिया था। स्कूटी से इतनी ऊंचाई पर गिरने के बाद भी उन दोनों की जान नहीं गई थी, वो सिर्फ घायल ही हुए थे। आहान सर निगाहों से इस हादसे को देख रहा था। उसने अपने आदमियों को कॉल पर कनेक्ट किया और फिर कहा, उन दोनों को पकड़ कर लेकर आओ, बात करनी है मुझे उनसे। आहान का ऑर्डर फॉलो करते हुए उसके आदमी गाड़ी से उतरे और उन्होंने कुछ ही देर में विजय और दामिनी को ढूंढ लिया था। विजय के पैर में फ्रैक्चर आ गया था तो दामिनी के हाथ में, वो दर्द से कराह रहे थे। फिर भी आहान के आदमी उन्हें बीच सड़क पर ले आए थे। कुछ ही देर में विजय और दामिनी के सामने आहान और आयुष खड़े थे। आहान गुस्से में घूरते हुए उन्हें ही देख रहा था। तभी दामिनी उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आप सबकी जिंदगी से चली जाऊंगी, मुझसे गलती हो गई आहान।
विजय चुपचाप नजर झुकाकर खड़ा था। आहान गुस्से में घूरते हुए बोला, अच्छा तो तुमसे गलती हो गई थी, और उसका क्या जो तुम लोगों ने बचपन में मेरे साथ किया? मुझे याद नहीं है, पर एक बात तो साफ है, तुम लोगों ने बहुत कुछ बुरा किया होगा मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं ऐसा इंसान बन गया। दामिनी को आहान अपनी मौत की तरह नजर आ रहा था। वो अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें याद नहीं है तो मैं सब तुम्हें बता दूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हारे बाप की गलती है तो तुम इसे सजा दो। इसके कहने पर ही मैं इसकी लाइफ में आई थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था एक शादीशुदा आदमी को फंसाने का। अरे मुझे तो इसके शादीशुदा और बच्चे होने का पता चला था तो मैं तो जाने को तैयार थी, इसने ही मुझे नहीं जाने दिया। दामिनी इतनी जल्दी रंग बदल लेगी ये विजय ने भी नहीं सोचा था। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। दामिनी अपने कदम आहान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैंने इसे समझाया था कि शिवानी को डिवोर्स दे दो, मामला वहीं सुलझ सकता है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था। इसके लिए इसने प्लान बनाया कि पहले वो तुम दोनों को रास्ते से हटाएगा। आयुष बहुत छोटा था तो उसको मारने का डिसीजन लिया, और तुम थोड़े बड़े हो चुके थे, तुमने हम दोनों को साथ देख लिया था और शिवानी को सब बताने की कोशिश करते रहते थे, बस इसीलिए विजय ने तुम्हारे साथ वो सब किया। आयुष हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो अफसोस भरे अंदाज में बोला, सीरियसली, आप मुझे जान से मारना चाहते थे? मेरी मॉम के प्यार का आप लोगों ने ये सिला दिया? इससे इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं है आयुष, इन्हें खुद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, आहान सर्द आवाज में बोला। मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब विजय का प्लान था, वो तुम्हें पागल करना चाहता था, बस इसीलिए उसने ये सब किया, दामिनी रोते हुए जोर से चिल्लाकर बोली। दामिनी आहान को आगे कुछ बताती उससे पहले विजय बीच में बोला, मैं कहता हूँ तुम चुप हो जाओ, इतनी जल्दी रंग बदल लिया तुमने। तुम ही कहती थी ना, सात जन्म तक साथ निभाओगी, सात दिन भी नहीं हुए वहां पर और बुरी तरह तड़पने लगी थी, तुम्हारे लिए ही मैंने वहां से भागने का डिसीजन लिया और तुम यहां मुझे फंसा रही हो। कुछ ऐसा बहुत बुरा था जो विजय नहीं चाहता था कि आहान के सामने आए। आहान भूल चुका था, उसी में उसकी भलाई थी, एटलीस्ट उसे कुछ याद नहीं था तो वो उन्हें जान से नहीं मारने वाला था। आहान का गुस्सा अब उस पर हावी हो चुका था। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोला, एक्सीडेंट हुआ है ना इनका, अफसोस है कि मैंने एक्सीडेंट में अपनी सौतेली माँ और बाप को खो दिया, लेकिन मैं क्यों अफसोस मनाऊं, वो भी तुम दोनों की मौत का, मुझे तो तमाशा देखना है। विजय और दामिनी आहान की तरफ हैरानी से देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आहान आखिर क्या करना चाह रहा है। आहान ने अपने आदमियों से तेज आवाज में कहा, वैसे भी ये पिछले कुछ दिनों से गायब हैं, कह देंगे कि किसी वेकेशन पर गए थे, बाकी इंतजाम मैंने पहले ही कर रखे हैं, एक काम करो गाड़ी में डाल दो इन्हें, और एक्सीडेंट बहुत भयंकर होना चाहिए,
नहीं नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो आहान, प्लीज मेरी बेटी के लिए मुझे जाने दो,
दामिनी जोर जोर से रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोली। डोंट वरी, तुम्हारी बेटी के साथ वो नहीं करूंगा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था। हाँ, लेकिन उसे कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि उसके मॉम डैड कौन थे, आहान ने सिर हिलाकर कहा। विजय इन सब में पूरी तरह चुप था। वो जानता था कि अगर वो कुछ भी कह ले या कर ले, आहान उसे छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में आहान के आदमियों ने उन दोनों को गाड़ी में डाला और फिर अपनी गाड़ियों से बार बार उसे गाड़ी को टक्कर मारने लगे। आहान ने आयुष की तरफ देखा, वो कंधे उचकाकर बोला, डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला हूँ। वैसे भी काफी सस्ती मौत दी है आपने इन्हें, ये तो इससे भी बुरी मौत डिजर्व करते थे। हाँ, मैं एक सीरियल किलर नहीं हूं ना, वरना उनकी एक अच्छी सी मौत प्लान करता। खैर छोड़ो, घर चलते हैं, कल का दिन हमारे लिए बहुत भारी रहने वाला है, आखिर हमने हमारे बाप को खो दिया, आहान ने सार्कास्टिकली कहा, जिस पर आयुष ने हंसते हुए सिर हिला दिया। आहान और आयुष गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी विजय और दामिनी की गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। उनके आदमी तब तक वहां खड़े रहे जब तक उन्हें ये तसल्ली ना मिल जाए कि विजय और दामिनी इस दुनिया से जा चुके हैं। वहीं आहान के चेहरे पर भी सुकून के भाव थे, उसे कुछ याद नहीं था, फिर भी न जाने क्यों विजय और दामिनी को मरते हुए देखकर उसके दिल को ठंडक महसूस हो रही थी।